أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صلوات اپنے تمام مرحومین اور شہداء ملت کے سال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھ کر پڑھ دیجیے. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد والے محمد پر. ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں مل کر سلام دیتے ہیں. عزیزان محترم, بات ہماری ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل کی, ہے 88ویں آیت. اس پر ہم نے بات کا آغاز کیا تھا, اس کی روشنی میں گفتگو کو لے کر آگے چل رہے ہیں. حبیب کہہ دیجئے قل لئن اجتمعت الانس والجن, کہ تمام انس و جن جمع ہو جائیں اس بات پر کہ قرآن کی مثل کوئی چیز لے آئیں گے, لا یاتون بمثل, نہیں لا سکتے, چاہے یہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں, سب ایک دوسرے کی پشت پر آ جائیں. کل اور پرسوں جو ہم نے گفتگو کی تھی اس میں بھی ایک طرف اشارہ کیا تھا, اور وہ بڑا اہم ہے, شیعہ عقیدے کے اعتبار سے بہت ہمیں یاد رکھے. جب ہم روح کا ذکر کر رہے تھے, امر کا ذکر کر رہے تھے, ہم نے کہا بھی تھا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے. عقیدہ بالکل صحیح سالم ہونا چاہیے, سمجھ گئے. عقیدہ وہ نہیں ہے جو چار آدمی بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ بناتے ہیں. کسی سے آپ نے بات کی, اس نے کہا جی میرا عقیدہ ہے. کیا مطلب عقیدہ ہے, کسے کہتے ہیں عقیدہ؟ شاید اسے عقیدے کی تعریف بھی نہیں معلوم ہوتی ہوگی. عقیدہ عقد سے ہے, عقد ہے گرہ گٹھان, سمجھ گئے. عقیدہ اس سے کتنا پختہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے تو کس بنیاد پہ ہونے چاہیے, ہوا میں ہونا چاہیے یا عقلی بنیاد پہ ہونا چاہیے؟ عقلی بنیاد پہ ہوگا نا. یاد رکھیے گا فروع دین کی منزل بھی بعد میں ہے نا, لیکن وہاں بھی عقل کا استعمال ہے, عقل کے بغیر نہیں ہے. اصول دین تو ہے ویسے ہی خالصتاً عقلی مسئلہ ہے, عقل سے کوئی نہ کوئی دلیلیں ہونی چاہیے کہ ہم بالکل حق پر ہیں. یقین تو ہونا چاہیے انسان کو, یہ تو یقینوں کے میں حق پر ہوں. شک کے حالت میں زندگی نہیں کرنی ہے, یقین کے حالت میں. ٹھیک ہے, ہم نے کل ولایت کے اختیارات پہ بات کی نا آپ سے, کہ پروردگار عالم کے لیے ولایت ذاتی ہے, انما ولیکم اللہ. اس کی ولایت میں کوئی اس کا شریک, یاد رکھے گا اس بات کو, ہر جگہ ہم آج کل اس بات پہ زور دے رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, بچوں کو جوانوں کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے, کدھر لے کے جایا جا رہا ہے, کس طرف موڑ کے لے جایا جا رہا ہے. بالکل ہنالک الولایت للحق للہ الحق, بس کسی بھی قسم کی ولایت قرآن اعلان کر رکھے سوائے اللہ کی کسی کے لیے حق نہیں ہے. یعنی وہ جو ولایت مطلقہ خاصہ جس کا ہم نے اصطلاح استعمال کی تھی کہ وہ کلی ولایت کس کے پاس ہے, اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نبی بنا؟ اگر کسی کے سر پہ, کسی بھی نبی کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے تو کس نے رکھا ہے؟ پیغمبر بنایا ہے تو کس نے بنایا؟ اور پھر ان تمام انبیاء پر اگر کسی کو سردار بنایا ہے تو کس نے بنایا؟ خاتم النبیین, سید المرسلین, طہٰ, یاسین, مدثر, مزمل, سراج منیر, جتنے بھی القابات لیتے جائیے, یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایو رسول, یا ایو نبی, رحمت للعالمین, نذیر، بشیر، یہ سارے نام، یہ ساری صفات، یہ سارے القابات خود لے لیے رسول نے یا کسی نے دیے ہیں؟ قرآن میں ہے نا، یہ سارے منصب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. اس سے سمجھ لینا چاہیے اتنی سی بات سے کہ جتنے بھی منصب ہیں، کبریائی یعنی اپنے لیے اکبر کا لفظ استعمال کرنا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. بس کس کے لیے زیبہ ہے بڑائی؟ وہ یکتا، وہ تنہا، اسی لیے وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر. دیکھیے آج عقیدت کے اعتبار سے جو مسئلہ آپ کا حل کرنے جا رہے ہیں نا، وہ سمجھ میں آ جائے. میں نے عرض کیا نا، میں تو محفلوں میں بھی جاتا ہوں، مجالس میں بھی جاتا ہوں، اور بعض اوقات عجیب حالت ہو جاتی ہے، برائی بھی مول لے کے آ جاتا ہوں، کیونکہ میری عادت ہے ٹوک دینے کی. میں وہیں اسٹیج پہ ٹوک بھی دیتا ہوں، کئی بار بدمزگی ہو گئی میری وجہ سے، لہذا کوشش کرتا ہوں کہ اب نہ جاؤں، بہت کم سلیکٹڈ جگہوں پہ جاتا ہوں، کیونکہ کیسے سنیں، غلط پڑ رہا ہے نا، گستاخی کر رہا ہے، عقیدے کے خلاف جا رہا ہے، عقیدے کے خلاف بات کر رہا ہے، اور نیچے سے نعرے لگ رہے ہیں. لوگ تو خوش ہو رہے ہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں وہ تو فضائل علی پہ خوش ہو رہے ہیں نا، علی کا نام آ رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں. خوش ہونا چاہیے، مومن کا کام یہ کہ علی کا نام ہے اس کے چہرے پہ رونق آ جائے گی، ہے نا، آپ کا قصور تھوڑی ہے. لیکن وہ کر کیا رہا ہے، وہ کاریگری کیا دکھا رہا ہے؟ وہ کاریگری کچھ اور دکھا رہا ہے اپنی شاعری میں، وہ عقیدوں کو ادھر کا ادھر کر رہا ہے، دیگر کو کر رہا ہے. بھائی شاعر کا کلام، چاہے میں کہوں، ابھی تو کبھی کبھی شعر کہہ لیتا ہوں، شاعر کا کلام وہی الہی تو نہیں ہے؟ شاعر کا کلام قول معصوم تو نہیں ہے کہ اس کے ایک شعر کو مثال بنا کے انسان عقیدے کو ادھر سے ادھر لے جائے؟ امکان ہے نہیں ہے نا. جائیے اب آپ کو دیکھیں، آج بڑا مطلب، کل ہم نے وہاں پہ بات کو چھوڑا ہے تو اس کو لے کر تو آگے چلیں گے نا، بات ہی قرآن پہ ہو رہی ہے، پھر بتائیں گے کہ کیوں معصومین نے قرآن سے رجوع کرنے کا. قرآن مسئلہ حل کر رہا ہے نا، صاف طور پہ حل کر رہا ہے. تو وہ اللہ کی ولایت ہونا لیکن ولایت اللہ الحق، بس وہ جو ہر طرح کی ولایت، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ایک سورہ توحید ایک طرف اللہ کی توحید کا اعلان کرتی ہے، ایک طرف مولا کے فضائل بیان کرتی. جی میں بتا رہا ہوں آپ، کیونکہ میں نے اسی سورہ کو جب ایک جگہ سنا، کسی اور علاقے میں، کراچی میں نہیں، تو میں پریشان ہو گیا کہ کس طرح توڑ مروڑ رہا ہے تفسیر برائے، یعنی اپنی مرضی پہ ڈھال کے، مطلب کوشش یہ تھی کہ وہ اس طرف چلا جائے جس کو کہا جاتا ہے آج کل فیشن ہو گیا نا، نسیریت. فیشن کیا ہو گیا؟ فیشن. یہاں پہ نسیری ہے، اس کو کچھ نہیں پتا نسیری کون، میں ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں، اس کو بالکل نہیں پتا. ایک سے میں نے پوچھا جب وہ تقریر کر کے اترا، کیونکہ آپ جانتے ہیں بعض جگہوں پہ جو ہوتی ہیں مجلسیں پورے پورے دن اور پوری پوری رات، دو دو دن چلتی ہیں نا، ایک پڑھ رہا ہے، دوسرا پڑھ رہا ہے، تیسرا پڑھ رہا ہے. خیر مجلس میں نہیں بیٹھا، باہر بیٹھا ہوا تھا بیٹھک میں، تو وہاں آواز تو آ رہی تھی، اس نے اسی پر پڑھا سارا. تو جب آئے تو میں نے پوچھا نسیری کون تھا، کون تھا نسیری؟ تو کہتے وہ حضرت علی کا غلام تھا، حضرت علی کا چاہنے والا تھا، حضرت علی کو خدا کہتا تھا، حضرت علی نے مار دیا، یہی سنایا جاتا ہے نا آپ کو، پھر علی نے دوبارہ زندہ کر دیا. تو اس نے کہا دیکھیے میں تو پہلے کہتا تھا آپ خدا ہے، آپ نے زندہ کر دیا. یہ علم کا عالم ہے، اور پورے پورے بچوں کو، جوانوں کو یہی پڑھایا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، یہی سنایا جاتا ہے آپ کو، یعنی اس کو یہی نہیں معلوم کہ نسیری ہے کون. یہ نمیر ان نسیری نام کا کریکٹر عباسیوں نے تخلیق کیا تھا دسویں امام کے زمانے میں، جب امام کو سامرا میں قید کر دیا تھا، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات بھیجیے. سمجھ گئے آپ، دسویں امام کے زمانے میں انہیں پلانٹ کیا تھا، جیسے آج یہ پلانٹ کی کر کے ہمارے اندر چھوڑے جاتے ہیں، عباسیوں نے پلانٹ کیا تھا، امام کو قید کر دیا تھا، اس کو پال پوس کے پروان چڑھایا، اس کی ٹریننگ کر کے ان علاقوں میں چھوڑا جہاں ان کو معلوم تھا کہ یہاں اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں، اور وہاں اس نے وہ عقیدہ ایجاد کیا تھا جس کی اس کو پوری ٹریننگ دی گئی تھی کہ اللہ حلول کرتا ہے. اللہ نے حلول کیا علی میں، علی کے بعد حسن میں، حسن کے بعد حسین میں. پڑھتا ہوں بھائی اور پڑھاتا بھی ہوں، खुश्क हो जाएगा बहुत ज्यादा मजमून। अगर इस पर क्लासें अलग रखनी हो तो रख लीजिएगा, बता दूंगा कि कितने फिरके सिर्फ हमारे यहां नहीं दूसरों के भी मौजूद हैं जो हुलूल के कायल हैं, जो कहते हैं अल्लाह हुलूल कर जाता है। मैंने अर्ज कर दिया हमारे यहां नहीं, परेशान मत होगा, दूसरों के भी है, पूरी पूरी फेरिश्ते मेरे पास, पूरी पूरी उनकी तारीखें हैं, तारीख कब पैदा हुए कब खत्म हुए वो फिरके। जिस नुमैर अन्नुसैरी को परवान चढ़ाया छोड़ दिया, अब ये वहां अपनी मौलायत का ढोंग रचाता था, क्योंकि हमारे लोग, मैंने कहा ना कि इधर मौला अली का नाम आया माशाल्लाह, है ना, इतने सादे मत बनो आज के दौर में कि कोई भी तुम में घुस के तुम्हारे अकीदों को तबाह करना शुरू कर दे। लाखों करोड़ों कुर्बानियां दी हमारे उलमा ने, हमारे लोगों ने, हर सरजमीन पर, हर सरजमीन पर। वो लोग हमें कत्ल करके नहीं हरा सके, जब वो हार जाते हैं उस मैदान में तो फिर वो ये रास्ता इख्तियार करते हैं कि इनके अकायद को मस्क करो, इनकी नस्लों को तबाह करो। समझ में आई हमारी बात? बेशक खुश्क हो जाएगी आज की बात, लेकिन पैगाम तो मुझे आपको पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं मजलिस खुश्क हो जाएगी या तर हो जाएगी। बाकी के बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, जवान मेरे सामने बैठे हैं, मुझ पर वाजिब है इन तक ये पैगाम पहुंचाना। मैं जानता हूं कितनी जगहों से पहुंचाया जाता है, कितनी जगहों से पहुंचाया नहीं जाता। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब इसने शियों में जाके ढोंग रचाना शुरू किया, ये पहली बार वहां लगा था नारा अली अल्लाह, अब्बासियों ने लगवाया था। और मजे की बात, जो आज हालात है वही हालात, असल शियों को कत्ल किया जाता था उसे बिल्कुल आजादी थी, उसे अब्बासियों ने नहीं पकड़ा, क्योंकि अब्बासियों ने छोड़ा था ना, पकड़ते क्यों, वो हर आबादी में फिरता था इराक की, अब्बासियों का दारुल खिलाफा था ना बगदाद, पूरी आबादी में फिरता था शियों को, जाके अपने आप को शो करता था मौलाई अली अल्लाह अली अल्लाह। लोग शिया जो सीधे साधे थे, भाई ये तो बड़ा पक्का मौलाई है भाई, जैसे हमारे यहां होता, आया दूर से उसने ठक से सजदा किया। अब लोगों ने कहा इससे बड़ा कोई मौलाई नहीं है। हमारे एक शहर में ऐसा हो चुका है मालूम है आपको, रोज आता रहा 6 महीने तक, रेकी करता रहा, और लोग यही, 6 महीने में उसने सबको यकीन दिला दिया कि मुझसे बड़ा मौलाई कोई नहीं, और 6 महीने के बाद जुमे की नमाज में वहीं उसने ब्लास्ट किया, 100 मोमिन शहीद हुए, 300 जख्मी हुए। मैं जगह का नाम अमदन मसलहतन नहीं ले रहा हूं, अलग पूछेंगे बता दूंगा, उस शहर भी जाता रहता हूं मैं, अब भी जाता हूं। समझ में आ गई बात? इतने सादे बन रहे कि जो भी आ जाए, जो ढोंग रचा के आ जाए वो हो गया हमारा। कुछ कोते कुछ के जो आ रहे हमारे यहां घुस गए, उनके शजरों का भी नहीं मालूम है, ये आए कहां से, अचानक कहां से नमूदार हो गए भाई, ये किधर से आ गए, कौन इनको लाया है? हमारे यहां कम से कम खानदानों की शनाख्त तो होती है, उनका कुछ पता ही नहीं है, ये भी पता नहीं कि हुआ भी है कि नहीं हुआ भी हमारा वो। समझ में आई बात? बस ये कब ईजाद हुआ था? अब्बासियों के जमाने में, 10वें इमाम और 11वें इमाम का जमाना था जब ये कैरेक्टर पैदा हुआ था, जिसको चाहिए आइए मैं पढ़ा दूंगा, आपको दे भी दूंगा, हवाले भी दे दूंगा तारीखों के, इत्मीनान रखें आप। मैं कह रहा हूं ना, मेरी हर जुमला हर बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं हवा में थोड़ी बातें करके चला जाऊंगा आपके सामने, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है। समझ में आ गई हमारी बात? जिसको शक हो आए मेरे साथ बात कर ले, मैं उसको बताता हूं कब पैदा हुआ कब मरा, ये कौन था, ये नुसैरी, उन्हीं ने बनाया था। आज भी याद रखो, कुछ लोग लाशौरी तौर पे उनके पीछे हैं, कुछ को शौरी तौर पे छोड़ा गया है और उनके पीछे लाबियां बना दी गई हैं, उनके साथ 100-150 आदमियों को रखा जाता है जो आगे बैठे हैं, शोर मचाएं ताकि किसी की हिम्मत भी नहीं होगी इनके खिलाफ खड़ा होकर कोई बात कर सके। समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा साफ मैं और क्या बात करूं आपसे। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जज़ाकअल्लाह, इसे बुलंद आवाज में एक सलावात इनायत फरमाइए। आइए, ये तो हमने आपको तारीखी पस मंजर बता दिया ना इन हालात का, कि ये नए नहीं है, इसलिए हम जैसे नहीं घबराते। हम जैसे नहीं घबराते। उस वक्त तो मीडिया था ही नहीं, मस्जिद भी नहीं थी, कोई थी किसी के पास? इमाम कैद में थे सामरा में, कुछ भी नहीं था। मिटा सका कोई तशय्यो को? आज कहां से मिटाएगा? आज तो माशाल्लाह हम जैसे नाचीज गुलाम और हमसे बड़े बड़े लोग मैदान में उतरे हुए है ना, उतरे हुए है ना जवाब, अब तो कोई मसला ही नहीं है। इसलिए हम जैसों को फिक्र नहीं होती इस बात की, मगर फिक्र होती है इन बच्चों की, इन जवानों की, किन को अपने कंट्रोल में रखना है। नहीं, खबरदार, बहकावे में मत आना, बहकावे में मत आना। अली वही अली है जो अल्लाह की बारगाह में सजदा करता नजर आ जाए। अली वही अली है जो अल्लाह की बारगाह में कहता है, परवरदिगार कफा बी फखरन अन अकूना लका अब्दन, तूने अली को सब कुछ बनाया, विलायत का ताज पहना दिया, अमीरुल मोमिनीन बनाया, इमामुल मुत्तकीन बनाया, लेकिन अली का फख्र यह है कि वो तेरा बंदा है। समझ में नहीं आती बात। इंशाल्लाह जिंदगी रही, याद दिला देना बेटा, जैसे कल याद दिलाया था आज याद दिलाया। ये बंदगी पर थोड़ी सी कल बात करेंगे आपसे ना, कि बंदगी क्या है। लफ्ज तो मैंने कह दिया ना, लेकिन तशरीह कल करेंगे। लेकिन अभी आइए सूरह तौहीद क्या है, किसको ज़ेबा है ये काई? दुई का तसव्वुर हुआ, मुशरिक हो गया इंसान, अल्लाह के साथ कोई उसकी उलूहियत में शरीक, वो अहद है, अहद नाकाबिले तकसीम। अहद किसे कहते हैं? नाकाबिले, अल्लाह अहद है, अली अहद नहीं है, अली वाहिद है, है वो भी अकेला लेकिन वाहिद है। अहद और वाहिद में फर्क क्या है? अहद का सानी नहीं होता, वाहिद का सानी होता है। अल्लाह का सानी हो तो अल्लाह नहीं रहता। अली का सानी हसन ना हो, सालिस हुसैन ना हो, राबे सैयद सज्जाद ना हो, बारहवें तक चले जाइए, अगर ये सिलसिला मुकम्मल ना हो तो अली की तकमील नहीं होती। यार आसान हो गया मसला, फर्क समझ में आ गया? ओबिल्लम यलिद वलम यूलद, तो वैसी हो गया ना, मानी मरहले तौलीद अल्लाह के साथ नहीं है ना, उसे उसने किसी को जन्म दिया ही नहीं, उस कैफियत में खालिक है, जन्म देने वाला नहीं है ना, उसने किसी से जन्म लिया। अली ने जब अपना तारुफ कराया ना, आधा नहीं कराया, क्या कराया तारुफ हर जग में, अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा बेटा बेटा, नहीं आती अकल में, क्योंकि जानते थे अली कि जमाना आएगा एक ऐसा जब मेरे चाहने वालों के बच्चों को बहकाया जाएगा। लिहाजा जहां तारुफ कराया, आधा नहीं कराया, पूरा तारुफ कराया, अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं, अबू तालिब का बेटा अली हूं। क्या नाम है अली की मां का, है कोई ऐसा जो नहीं जानता हूं? है? बच्चे बच्चे से पूछूंगा तो बता देगा, फातिमा बिनते असद। समझ में आ रही है बात? अली वो जिसके बाबा का नाम है अबू तालिब, जिसकी मां का नाम है फातिमा बिनते असद। अली वो, अल्लाह कौन? वलम यकुल लहु कुफुवन, अल्लाह का हमसर हो तो अल्लाह नहीं रहता। अली की हमसर फातिमा ना हो तो विलायत इस्मत इमामत किसी की तकमील हो ही नहीं सकती, जब तक फातिमा हमसर ना हो अली की। फर्क समझ में आ गया? अब भी कोई अकल के पीछे लठ लेके दौड़ रहा है तो दौड़ता रहे भाई। कैसे बताया मैंने आसानी से आपको, मजबूरन बताना पड़ा, वरना फर्क बताने की भी जरूरत नहीं। वो है, वो वही है जिसकी बारगाह में अली सजदा रेज है, जिसकी बारगाह में अली जब कयाम की हालत में हो तो इस तरह गिरिया करता है कि उसकी रीछ तर हो जाती है। समझ में नहीं आती बात? इख्तियार, जभी तो ये कैफियत है अली की कि जो इख्तियार अली को दिए वो किसी को दिए भी तो नहीं। इख्तियार देने वाला और लेने वाले में यही तो फर्क है, वो जो दे रहा है वो खालिक है, उसने इस अनवार मुकद्दसा को खल्क किया है। समझ में आ गई बात, इससे आसान तरीके से कैसे समझाएं, बात वाजे हो गई। बस ये फर्क याद रखना, कभी उस तरफ जाने की कोशिश, सब इख्तियार दिया अल्लाह ने, यहां दिया। अब इसीलिए देखिए, अब कल से ले जो पढ़ा था वहीं से फिर लेके चले। ये बताना जरूरी था ना कि क्यों कुरान की तरफ दावत दिए कि जहां तुम मसाइल में फंसोगे कुरान तुम्हारे मसले को हल कर देगा। क्या करेगा? युफस्सिरु बाज़हु बाज़ा यशहदु बाज़हु अला बास, इनमें से बाज की तफसीर कर देंगी और बाज की सदाकत की गवाही दे देंगी। आयात खुद आयात एक दूसरे की तफसीर करती चली जाएंगी। कल जो खुतबा शुरू किया मैंने 145वां, तो वहां आपने बताया था कि इस जमाने में, आखिरी जमाने में कुरान और अहले बैत की हालत क्या हो जाएगी। वैनौ सयाति अलैकुम मिन बादी ज़मान, मेरे बाद अनकरीब तुम पर ऐसा जमाना आने वाला है ना, जब किताब के साथ लोगों की क्या होगी, जुदाई हो जाएगी, छोड़ देंगे लोग कुरान, तन्हा हो जाएगा। यहां तक लफ्ज है कि दर बदर हो जाएंगे कुरान भी और अहले बैत भी, कोई उन्हें पनाह देने वाला ना होगा। कैसे, जुमले सुन लीजिए फिर बात समझ में आ जाएगी। ये खुतबा नंबर 145वां, इसलिए दे रहे कि मौका मिल जाए फिर मुहर्रम आशूर के बाद से ही तो पढ़िएगा, लेकिन तरतीब मैं बता दी आपको कि मैं वो तरतीब बता रहा हूँ जो मुफ्ती जाफर साहब ने तरतीब दिया, क्योंकि बाद नुस्खों में फिर वो नंबर आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए एक ही तरतीब पर लेके चल रहे हैं आपको, वरना चार तरतीबें तो हमारे पास मौजूद हैं। खैर सलावत इनायत फरमाइए। और अब वो वक्त आ गया आपका पसंदीदा जुमला कहने का कि थोड़ा थोड़ा सा आगे सिमट आइएगा, क्योंकि पीछे जो माशाल्लाह लोग आ रहे हैं तो अब जरा मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो उधर बैठते हैं दरी सेट के। एक सलवात भेजते हुए आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, शाबाश, जज़ाकअल्लाह, आ जाइए आगे, आ जाइए। या अली अल्लाह फल किताब व अहलहु फी ज़ालिक ज़माने फिन्नास है वलैस फीहिम वमाअहुम वलैस माअहुम। ये वो जमाना होगा कि किताब और अहले बैत, फल किताब व अहलहु फी ज़ालिक ज़मान, उस जमाने में ये किताब और अहले बैत लोगों के दरमियान होंगे, फिन्नास है वलैस फीहिम, लोगों में होंगे मगर नहीं होंगे, यानी ऐसे होंगे कि नहीं है, दोनों की बात हो रही है। फल किताब हो व अहल हो, ये किताब और अहले बैत इस जमाने में ऐसे हो जाएंगे कि लोगों के दरमियान नहीं है, ले माहू व ले समाओ, बजाय तुम समझोगे कि ये साथ साथ हैं, नहीं होंगे लोगों के साथ हैं, नहीं होंगे लोगों के साथ। क्यों? लेना जलाल ला तुआफिकुल हुदा इन इजतमा, क्योंकि कभी भी गुमराही और हिदायत एक साथ हो ही नहीं सकते, अगरचे कि तुम्हें बजाहिर नजर आ रहे हो। यानी ये जमाना जो गुमराही का जमाना है, इसमें तुम ये समझोगे कि कुरान और अहले बैत लोगों के साथ है, नहीं होंगे लोगों के साथ, क्योंकि गुमराही में है लोग। लेना जलाल तला तो आफिकुल हुदा, ये मौला का कलाम पढ़ रहा हूं आपके सामने। लेना जलाल ला तो आफिकुल हुदा इन इजतमा, अगरचे बजाहिर ये तुम्हें साथ नजर आएंगे लेकिन ये नहीं है, लोगों के दरमियान नहीं होंगे, दोनों नहीं होंगे, ना किताब होगी ना अहले बैत। इजतमा उन नास अलल फुरकत, लोग मुत्तहिद हो जाएंगे। हैं कितनी अच्छी बात है लोगों का मुत्तहिद होना, किस बात पे मुत्तहिद होंगे वो सुनिए। मौला फरमाते हैं इजतमा उन नास अलल फुरकत, तफरीक अंदाजी पे, फितनों फसाद पे सारे लोग मुत्तहिद हो जाएंगे। आज का जमाना सबका इत्तेफाक हो जाएगा, सब इस पे झगड़ा करने में, फितना करने में, फसाद करने में सब मुत्तहिद होंगे। हाँ ये तो करना ही करना है, दूसरा नहीं मिले तो आपस में कर लो, करना है। छोटी जगह हो वहां करना है, बड़ी जगह हो वहां करना है, दूसरा हो उसके साथ, सबकी बात कर रहे हैं, किसी एक तबके की बात थोड़ी कर रहे, यहां सबकी बात हो रही है, खुतबे में सबकी बात हो, जितने भी हैं। वजतमाउ अलल फुरकत, वजतमाउ नास अलल फुरकत, ये तफरीक अंदाजी पे जमा हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे। वफ्तरकू अनिल जमात, और इत्तेहाद पर इनका इख्तिलाफ हो जाएगा, जमात से कट जाएंगे, इजतिमा से कट जाएंगे। इस पर इनका इख्तलाफ होगा कि जमा नहीं होना और लड़ने पे इत्तेफाक हो जाएगा। हाँ, लड़ना जरूर है, तफरका जरूर फैलाना है एक दूसरे के खिलाफ। समझ में आ गया? बस ये कौन सा जमाना होगा? लम यबका इंदहू इल्ला। एक सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इल्ला। एक और सलावत इनायत फरमा दीजिएगा। लम यबका इंदहू इल्ला रस्महू औ खत्तुहू। इनके पास कुछ भी नहीं होगा कुरान में से सिवाय वो रस्मों को जो लिखे हुए नहीं होते हुरूफ, बस होंगे। वलम या वला या आरिफूना इल्ला खत्तुहु, और सिवाय खत के उसकी लकीरों के इनके पास कुछ नहीं होगा जिसको कुरान समझ लें। ये हो इनके पास बचा हुआ होगा बस कुरान में से। वह इसको ये कहेंगे कि हाँ ये हमारे पास है ना, ये दफ्ती में जो किताब रखी हुई है ना हमारे पास, या हुरूफ होंगे या वो उसके रस्मुल खत होगा, खूबसूरत छाप रहा होगा, मुख्तलिफ रस्मुल खतूत में छापा जा रहा होगा, पढ़ रहे होंगे, अमल नहीं होगा। रुब्बा, अब ये भी हदीया हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलावात भेजिए। कैसा जमाना होगा? रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यल अनहु। अक्सर लोग कुरान की तिलावत करते हैं, करेंगे और कुरान उन पर लानत भेजेगा। कितनी बड़ी बात है। अक्सर रुबता लिल कुरान वल कुरान यल अनहु, कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान इन पर तिलावत। क्यों? सिर्फ इस नियत से पढ़ेंगे, यकीन जानिए मैं जानता हूं, इस नियत से पढ़ते हैं कि इसमें से कौन सी आयत है वो निकाला जाए जो मेरे बातिल मतलब को पूरा करे। समझ गया आप? फितना, फितना, ये फितने को दौर। कौन सा ऐसा लफ्ज निकले जिसको लेके मैं दौड़ू? कौन सी ऐसी आयत है जिसे मेरा मतलब हल हो? इसलिए पढ़ेगा, इबादत के लिए नहीं पढ़ेगा, समझने के लिए नहीं पढ़ेगा, बल्कि खोलेगा किताब, ढूंढेगा उसमें कौन सी, हाँ निकल आई आयत, निकल आई आयत। ये देखो देखो, इन शिर्क ला जुल्म अजीम, इन शिर्क ला जुल्म लगाओ है वो जितनी शिर्क की आयत को काफिर करने के लिए मिल जाएंगी ना आयतें उसको। देखिए कुरान में आए थे तो आपके अमाल भी जाया कर देता। इन सूरह अलीम, शिर्क से बड़ा कोई गुना नहीं, मुकाबला कुरान में है यही है। लेकिन मसला है कि शिर्क, शिर्क क्या है? एक जुमला आपको दे रहे हैं, क्योंकि अब दो मजलिसें बची हैं हमारे पास, जाहिर है कि इसके बाद शाम करीब है, करनी है इसी हवाले से, एक बंदगी और एक ये शिर्क। लोगों को नहीं मालूम कि शिर्क और शुक्र, ये जो शोर मचाते रहते ना, शिर्क 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 कर दिया, शिर्क कर दिया, मालूम ही नहीं भाई। शिर्क अलग है और कुरान, शुक्र और शिर्क में फर्क है, फर्क नहीं कर पाते। देखिए सूरह लुकमान ही में आया, एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वसैनल इंसान वाहन अनिश्कुरली वाले, इस पे आप सारा साल इस साले सवाब की मैं जिसे सुना करते हैं, हम भी पढ़ते रहे सारी गुफ्तगू, अनिश्कुरली वाले वाले, मेरा भी शुक्र वालदेन का, वालदेन का शुक्र कैसे अदा करता है आदमी, पढ़ नहीं रहे इसकी तफसील में नहीं जा रहे, अभी सिर्फ आपको हमने इशारा दे दिया, आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। आजकल स्कूल कॉलेजों में घुस गए हैं ना नासूर, शिंग कर देते हैं ये शिर्क शिर्क, 10 आयात पढ़ के सुना देते हैं तर्जुमा, शिर्क है भाई। ठीक है शिर्क की आयात है, शिर्क है कहां, कहां पर शिर्क है? गैर खुदा को सजदा नहीं करना शिर्क है, बिल्कुल हमें भी मालूम है, लेकिन बच्चों को समझाया नहीं जा रहा। इसमें है जनाबी यूसुफ, खुदा है या क्या है, खुदा है या गैर खुदा है, ख्वाब भी देखते हैं सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, और ताबीर बाप भी सजदा कर रहा है, 11 बेटे भी सजदा कर रहे हैं। मत की कुरान ने जनाब याकूब की तो नबूवत, सजदा मुझे करना था कर दिया यूसुफ को, कि अभी वो सजदा जनाब यूसुफ को उस हैसियत से थोड़ी है, बताएंगे हम कहीं और से थोड़ी लाएंगे, यफस्सिरु बाज़हु बिबाज़, खुद तफसीर कर देंगे कि शिर्क वहां होता है जहां किसी किसी जालिम या किसी को खुदा समझ के फिरौन नमरूद इनकी चौखट पे सजदा रख देने से। सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे सजदा किया है, कोई मौलवी शिर्क हो गया, चिल्लाया कोई मौलवी, उनका अपना है ना। लेकिन जहां अब ये आले रसूल की बात आएगी, अब आले मोहम्मद की मोहब्बत में किया जाने वाला हर फेल पे इल्जाम लगा, आले मोहम्मद की मोहब्बत में जो फेल किया जाए उस पर इल्जाम लगा देंगे शेर, इंशाल्लाह आपके सामने क्लियर कर देंगे। जिंदगी रही दो चीजें, एक बंदी, ये दोनों का, क्योंकि आपस में चूली दामन का साथ है, बंदी आदत यकीन के साथ होनी चाहिए, और हमारी इबादत के कोई ऐसा फेल हमसे सरजद ना हो, लाफ हो, है ना। बस ये अल्लाह बता देंगे, आप पहुंचा देंगे वहां तक, आप समझ में आ रहा है, की तरफ भेजें, जाओ कुरान की तरफ, जाओ कुरान, क्योंकि जहां तुम शुभों में फंसोगे शुभहात से निकाल देगा। जितने जानिए, मैं देख रहा था हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग आलिम दीन, अभी नहीं काफी पहले जवाब खाले, कोई 700 या 800 जवाब दिए हैं, 700 और खुशी इस बात की है कि जितने दिए, क्योंकि सामने वालों की शर्त यह थी कि कुरान से बताइए, कुरान से बताइए। अच्छा, मुश्किल ये होती है कि जब हम कुरान से बताना शुरू करते कहते हदीस लाइए। अरे भाई किसी एक जगह तो ठहर जा, हदीस देते कहते तो हदीस है, कुरान बताओ, कुरान बताओ, कहते कहते कुरान है हदीस बताइए, क्योंकि कुरान फिर क्या कहते जानते हैं, कहते क्योंकि कुरान हर कोई समझ नहीं सकता, हदीस लाइए। है ना, एक ग्रोह है ना हमारे यहाँ जो सिर्फ हदीस को ज्यादा वो देता है, और जब उसके सामने उन्हीं की हदीसें रख दो फिर परेशान हो जाए, ये हदीस है ना, मानिए ना आप, आपके यहाँ की हदीसें निका तारिकुन फीकुम सकलन किताब अल्लाह है वैतती अहले बैती, आपकी हदीस है फातिमा तो बिजा तुम मिन्नी मन अजाहा फकत अजानी से आय सितम है। अब आपका मौलवी आपको नहीं पढ़ाता तो हम क्या करें, हमारा कसूर थोड़ी है। आप चिल्लाया करते हैं शियों की हदीसें, शियों की सारी तो आपके यहाँ है। इमाम निसाई का क्या हश्र हुआ था बेचारे का, याद है आपको? नहीं याद है, उनको भी नहीं पता, हमने बताया। और यकीन मानिए कि एक बहुत बड़ा उनका आलिम दीन, सिर्फ जब मैंने ये हवाला दिया उसके बाद अल्लाह ने उसको उस रास्ते पर डाल दिया। मैं कोई क्रेडिट नहीं लेता, ना लेना चाहिए, परवरदिगार दूर रखे, किसी मौके पे जबान फिसल जाए पहले इस्तिग़फ़ार कर लेता हूँ कि नहीं अल्लाह माफ़ करे, वो है सारे काम अल्लाह और मौला के हाथ से होते हैं सारे काम। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने उसको इमाम निसाई का बताया कि भाई आप इमाम निसाई सियाही सित्ता में है ना, सुनन निसाई सियाही सित्ता में से एक है ना भाई, सियाही सित्ता में एक क्या है, सुनन निसाई। ये नाम तो 6 याद कर लिया करें आप, अपने याद करते हैं उनके भी याद किया कीजिए, है ना। सही मुस्लिम, सही बुखारी, सुनन तिर्मिज़ी, सुनन निसाई, सुनन इब्ने दाऊद, सुनन इब्ने माजा, ये 6 नाम याद करके रखिए, इसमें बहुत है। कुछ ना होने पर इतना कुछ है, इतना कुछ है कि वो परेशान है कि कैसे इनको निकालें। पहली कम हदीसें उस पर भी चक्कर में कि इनको निकालो, ये कहा हमारे बड़े बड़े इमाम लिख के चले गए हमारी किताबों में, ये 2-4 हदीसें हमारे लिए काफी होती हैं, 2-4 वो उज्जत कायम। लेकिन इमाम निसाई ने अलग से लिखी मौला आरिफान पर खसाइस अलविया के नाम से 101 अहादीस जमा की, अपनी हमारी नहीं, किताब लिख दी, क्योंकि मुख्तलिफ अनावीन पे वो लिख रहे थे, एक इस पे लिख दिए, जब लिख दी दुश्मन हो गए लोग उनके, जैसे कि होता है, और जनाब उनको शहर से शहर हिजरत करनी पड़ी, शाम पहुंचे मिस्र से निकाले गए, बगदाद से निकाले गए, उधर पहुंचे शाम, शाम पहुंचे मौलवियों ने घेर लिया, ये तुमने क्या किया, तुमने क्या किताब लिख दी, कहता भाई क्या हो गया, मैंने एक हदीस भी वहां से नहीं ली, जो हमारे यहां लिखा हुआ है अली के बारे में वो लिखा है, कहा है हमारी, तुमने लिखा क्यों, क्योंकि शिया हम पर हुज्जत कायम करते हैं इसके जरिए से। उनका अजीब बात है, हमारे यहां लिखा हुआ लिख रहा हूं तो कह रहे नहीं क्यों लिखा हुआ भी है, आप समझ में आए कि क्यों नहीं बताते वो हदीस, इनकी यहां है कोई एक खुतबा तो कभी हदीस सकलैन पे दे दो, सियाह सित्ता में है, कभी कोई एक खुतबा तो मोबाइल पे दे दो, आयत भी है हदीस भी है आपकी यहां, कभी कोई एक खुतबा गदीर पे दे दो भाई, मन कुन तो मौला फहाज अली सियाही सित्ता में मौजूद है, कभी जवाना ने जन्नत के सरदार की फजीलतें बयान कर दो, आपकी हदीस मौजूद है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है ना, नहीं बताते ना क्यों ये मसला, मैंने आपको बताया कि क्यों, क्योंकि बताएंगे तो लोगों को मालूम होगा ओहो हमें तो कुछ और बताते थे, तो उनको इतना मारा था, इतना तशद्दुद हुआ शाम में बेचारे पे इमाम निसाई पे, कि उस तशद्दुद की वजह से उनकी मौत वाकई हो गई, मर गए, लिखा हुआ उन्हीं ने लिखा है। जब ये मेरी गुफ्तगू हुई अपने उस अजीज फाजिल, बहुत फाजिल है उस फाजिल दोस्त से, तो वो चकरा गया, कहते मैं जाके देखूंगा, और जब वो गए, बहुत बड़ा उनका किताब खाना, मेरे किताब खाने से बड़ा किताब खाना है उनका, यकीन जानिए। और फिर मुझे एक दिन के बाद फोन आया कि ये तो बड़ा मसला है, वाकई ऐसा है, और इसी जुर्म में उनको मारा गया। समझ में आई भाई, इसी जुर्म में उनको मारा गया। नतीजा ये हुआ कि बस अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है देता है। फिर जब उन्होंने और देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो वो एक थोड़ी अब तो एक इंशाल्लाह काफिला बनता जा रहा है। आज भी एक साहब आने वाले थे, लेकिन वो रास्ते वास्तों की वजह से, क्योंकि दूर बहुत थे, क्लिफ्टन आने में देर हो गई, कोशिश करेंगे कि कल आपके दरमियान में ले आए उनको। तो ये पैगाम हक है, मैंने कहा ना परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये हुसैन का पैगाम अल्लाह खुद फैलाता है, हम किसी काबिल नहीं होते हम लोग, हमें आपको क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। ये जिसका दीन है ना वो खुद हिफाजत करता है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, बस खत्म कर दिया, बस आज के लिए इतनी ज़हमत। ठीक है, तो दो तीन बातें भूल जाऊं याद दिला दीजिएगा इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही। एक इस बंदगी पे बात करनी है, एक शुर्क और शिक्र, शिर्क और शुक्र पे, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपके जहन बिल्कुल साफ हो जाए कि हाँ भाई ऐसा मसला है। ठीक है ना, इस तरह से हुआ। और एक शख्सियत के बारे में याद दिलाएगा, मैं उसका जिक्र किए बगैर चैन से नहीं रहता, ख्वाजा तूसी का मुझे जिक्र करना है, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का। अगरचे कि अशरे सानी में जिंदा रहा तो मेरा ओल्ड रिजविया का मौजू वही है, उलमा के बारे में, फ़िक़्हे जाफरिया के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी आपको भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा हदिया तोहफा देकर जाऊँ कि वो था क्या वो शख्स नाबिगा, ये जो दो दो इंच की ज़बानें खुल जाती हैं ना मरजियत के खिलाफ, मुतदीन के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, कम से कम इनका इल्मी कदो काठ तो देख लिया करो, जो ये ज़बानें खोल रहे होते हैं, कम से कम इनको चेक तो कर लिया करो कि ये सतह का आदमी है, ये बात कर सके। एक जुमला दे के जा रहा हूँ आपको, तफसील बाद में, एक जुमला। पूरी तारीख तशय्यों में जितनी शियत एक अकेले ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने फैलाई है ना, किसी ने नहीं फैलाई अकेले। और दूसरे नंबर पे जिसका नाम आता है अल्लामा हिल्ली, इसी ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का शागिर्द है, वो इन्हीं तूसी के शागिर्द, इन्हीं ने पूरे पूरे इलाके सूबे और एक ने तो पूरा मुल्क मत्तबे अहले बैत में दाखिल किया। ज़बाने खोलने से पहले सोचा तो करो तुम किसी को करीब लाए हो या तुमने भगाया है, तुम लोगों को करीब ला रहे हो या भगा रहे हो, दूर कर रहे हो, दुश्मनियां पैदा करा रहे हो, मुसीबत का बाइस बन रहे हो तशय्यो के लिए। ज़बाने खोलना बड़ा आसान है, कोई मौजू नहीं, चलो मौलवियों को गाली देना शुरू कर दो। खैर चलो, हम जैसों की बात नहीं कर रहा मैं, उलमा मराजे जिनके सदके में आज पूरी दुनिया में अल्लाह ने उनको वो मकाम दिया, क्या उनका मर्तबा होगा, जिन लोगों ने करोड़ों तक आबादी को पहुंचा दिया उस जमाने में जब कोई नाम नहीं ले सकता, अब्बासियों का दौर, बनी अब्बास के दौर में तशय्यो को फैलाना मजाक था, ऐसे नहीं, थोड़ा सा तो तारीख का मुताला रखा करो कि उन लोगों ने कितनी कुर्बानियां देकर फिक्र जाफरिया को तुम तक पहुंचाया है, वरना क्या बराए रास्त तुमको पहुंचा, किसी इमाम ने दिए ये फिक्र नहीं ना, बस ये कुर्बानियां। और याद रखना, तूसी हो, हिल्ली हो, शहीद अव्वल हो, कोई हो, सबकी बुनियाद करबला है। ऐसे नहीं कह रहा जुमला, खामखा मैं आपको बता दूंगा, आप करबला, ये करबला है जो सबको खींच कर ले आती, करबला को बनाने वाला है हुसैन, है ना, बचाया किसने, एक ही नाम आप लेंगे ना जनाब सानिए जहरा, कोई शक नहीं, सर तस्लीम खम है अल्लाह, लेकिन 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 एक बात और याद रखिएगा, सानिया जहरा की तो शहादत वाकई हो गई ना, 6 महीने से 2 साल तक का वक्फा है करबला के बाद, उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ, 5वें 6वें इमाम ने मदरसे बनाए ना, 5वें इमाम ने मदरसे बनाए, 6वें इमाम ने यूनिवर्सिटी बना दी, 4थे इमाम ने मदरसा क्यों नहीं बनाया। वाकई करबला के बाद 35 साल तक आपकी जाहिरी हयात है ना, शहादत तक 35 साल, वो मदरसा कोई बना देते, कोई स्कूल बना दे, तो कुछ भी नहीं बनाया। 5वें इमाम ने खूब मदरसे बनाए, बुनियादें डाली, यानी बड़ा मदरसा बनाया, छठे इमाम ने उसी मदरसे को यूनिवर्सिटी बना दिया, दानिशगा बना, ऐसे ही है ना। चौथे इमाम ने 35 साल क्या किया, बस याद है। वो जो हमने एक बात कही थी ना कि हर नूर की खिलकत का एक मकसद है, हर इमाम ने अपने दौर की करबला भी बनाई है और खैबर भी बनाया है, जैसा जमाना है। जानते ना आप चौथे इमाम के बारे में पढ़ते हैं ना कि आप सारी जिंदगी खून के आंसू रोते रहे। क्या पांचवें इमाम करबला में नहीं थे? थे ना, छोटे से 4-5 साल के। आपके बारे में रिवायत है क्या वो नहीं रोते होंगे? रोते थे ना अपने जद को। बात है जिम्मेदारी, मसलहते जमानो मकान, कि किस जमाने में क्या करना है। जानते हैं चौथे इमाम कि मेरे बच्चों को मौका मिलेगा, दो बेटों को मौका मिलेगा, एक पांचवें इमाम को, एक छठे इमाम को, उसके बाद फिर नहीं मिला, बस दो को मौका मिलेगा आजादी से काम करने का, कुछ अरसे के लिए तबलीग करने का, मजहब हक्का को फैलाने का। तो क्या किया? उस मदरसे के लिए बुनियादों को पक्का किया। याद रखना मेरे जुमले को, चौथा इमाम वो है जिसने 35 साल तक करबला की बुनियाद फराहम की। हर जगह करबला करबला करबला, हज में, अरफात में, मीना में, वुजू में, नमाज में, मस्जिद नबी में, खाने खुदा में, जहां बैठ जाते थे करबला, और किसी में हिम्मत नहीं थी वाकयात बयान करने की। चौथे इमाम वाकयात बयान करते थे, रोते थे, दूसरों को भी रुलाते थे। क्यों? बुनियाद रख दी जाए कयामत तक। अब जितने भी मकतब बनेंगे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नाम पर, सबकी बुनियाद करबला। सबकी बुनियाद क्या है? करबला। करबला से हटके कुछ नहीं है हमारा, बुनियाद करबला को बनाए। इसलिए पांचवें इमाम हो या छठे इमाम, जितने अरसे आजादी रही, दर्स खत्म होता था और वाकई करबला बयान करो, किसी शायर को बुलाया जाता था, हत्ता के रोने वालियों को बुलाते थे इमाम हज के मौके पे, जो बैन करती है ना रोने वालियां, उनको बुलाते थे कि रो बैठ के, न्याज पतवा रहे, नजर का इहतमाम हो रहा है। हम तो नजर न्याज कहते थे, अब आप लोग आजकल नई नई इस्तिलाहात लेकर आ गए, अल्लाह खैर करे हमारी जबान पर भी और हमारी तहजीब पर भी, पता नहीं क्या क्या। वो अंजुमन से हटके पार्टी तक तो नौबत आ गई, अब देखिए और कहाँ तक जाती है। मैं तो हैरान हूँ, कहने फला पार्टी फला भैया ने, पार्टी क्या होता है, पार्टी क्या होता है, वो तो पार्टी आ गया, अब आ गया, और मुझे बुरा भला कहेंगे लोग, हमारी पार्टी को बुरा कह रहे। हमारी तहजीब अलग है भाई, अल्लाह के बंदो, हमने खूबसूरत तहजीब दी, खूबसूरत जबान दी, आज़ादारी को पता नहीं क्या क्या बनाते चले जा रहे हो भाई। बनाओ तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करना है करो, जो कर सकते हो है जीवे। बुनियाद बना दी, करबला करबला करबला, इसके ऊपर इमारत कायम कर दो। हर इमाम दर्स खत्म होता था, किसी पढ़ने वाले को बुलाया, आओ मेरे जद का जिक्र करो, उन्हें वाकयात बताए जाते थे पहले, अब पढ़ो, पढ़ रहे और इमाम रो रहे। और मैं बिल्कुल मुस्तनद रिवायत बता रहा हूं कि इमाम कहां बैठते थे, जहां चप्पलें होती थी, है ना। और मैं बता चुका आपको करबला के मक्तल की रिवायात में इख्तिलाफ जो है वो फितरी है ना, क्योंकि किसी को इजाजत नहीं थी, कोई लिख ही नहीं सकता था तारीख, ये तो सीना बा सीना चलते रहे ना वाकयात। 300 साल के बाद वो मौका फराहम हुआ है कि जो किताबें पोशीदा तौर पे लिखी भी गई थी वो सामने, मक्तल लिखे हुए थे, महफूज थे, कुछ जाया हो गए, कुछ छीन के जला दिए गए, लेकिन उसके बावजूद जो बचा इतना बचा कि कयामत तक के लिए काफी। वाकयात बताते थे, सारे वाकयात देते थे। आज कौन सा दिन, किसने बताया कि 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ? अगर ये अहले बैत का बचा हुआ कारवान ना होता, सैयद सज्जाद ना होते, किसको मालूम होता? ये सैयद सज्जाद है जो बयान कर रहा है वाकया, कि जब मुहर्रम की 7वीं हुई थी, हमारे छोटे छोटे बच्चों पर भी पानी बंद कर दिया गया था। 7वीं तारीख से पानी बंद। बड़े बड़े तजिया निगार बैठते हैं और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। मैं कहता हूँ चलो ठीक है भाई, बकौल तुम्हारे के सारा पानी खेमों में खत्म थोड़ी हो गया, अगर थोड़ा सा होगा, चलो थोड़ा सा मान लिया मैंने, फिर भी तीन दिन तो हुए ना, तीन दिन तो बिल्कुल ठीक है ना, आठ नौ दस को तो मान लो, क्योंकि गर्मी में पानी किस हिसाब से खर्च होता है, उस जमाने को टैंक और वो सब थोड़ी दे, जर्फ से खत्म होंगे, इतने सारे अफराद हैं, 100-150 बच्चे और मर्द सब मिला के, तो तीन दिन के प्यास का जो जिक्र है ना वो मुबालिगा नहीं है, वो सही है बिल्कुल। तीन शब रोज के प्यासे थे ये काफिला, मगर कोई प्यास का गिला नहीं करता था, क्योंकि सब जानते थे कि अगर कोई सबसे ज्यादा प्यासा है तो हुसैन है। लेकिन अजादारों, मासूम बच्चों को कौन समझा है, मासूम बच्चों को कौन समझाए। लिहाजा जब 9 तारीख हुई और ये 2 शबो रोज गुजर चुके, तीसरी शब का आगाज हुआ, तो अब खेमों से अलतश अलतश अलतश, प्यासे सब हैं, मगर बच्चों का आलम यह कि चिल्ला रहे हैं हाय प्यास हाय प्यास, कोई है पानी पिलाने वाला, यह आलम था। और इसी शब आशूर के अजीब वाकया थे, जब जब अहदो पैमान हो चुका था खेमे में, जिसका मैं जिक्र कर चुका, हुसैन अपने अंसार को लेकर निकले हैं मैदान की तरफ, और उन रिवायात के मुताबिक जिसमें नकल किए गए हैं ये वाकयात, एक एक नासिर को अपने उसकी शहादत का मकाम दिखा रहे, हबीब यहां तुम गिरोगे घोड़े से, इब्ने और सजा ये तुम्हारा मकाम, ये तुम सब, एक 13-14 साल का बच्चा है जो बार बार सामने आता है, हुसैन रुख फेर लेते थे, बार बार सामने आता है, जब वो सामने आता था हुसैन दूसरी तरफ देख के गुफ्तगू करना शुरू करता, सबको बता दिया, आखिर वो बच्चा सामने आया, चाचा जान आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, मेरे लाल कासिम क्या मसला है, कहा ये आप सबको बता रहे हैं, उनके शहादत की खबर दे रहे हैं, क्या मेरा नाम नहीं है दफ्तर शहादत में, चाचा जान मेरा नाम नहीं है। हसरत से देखा हुसैन ने अपने भाई की निशानी को, कासिम बेटा मौत को कैसा पाते हो, अब ये 13-14 साल का बच्चा कह रहा है अहला मिनल असल या अम्मा अहला मिनल असल, ए मेरे चाचा जान शहद से भी ज्यादा शीर, ये इतना सा हसन का शहजादा, कमसिन शहजादा, मौत का जायका बता रहा है कि अगर हुसैन के लश्कर में है तो उसकी मौत का जायका क्या होगा, जायका तक बता दिया उस बच्चे ने, मासूम बच्चे का, मेरे लाल हां तेरा नाम है, बल्कि तेरे छोटे भाई अली असगर का भी नाम है, घबरा गया कासिम, घबरा कर कहते हैं चाचा जान क्या ये अश्किया खेमों में घुस जाएंगे, नहीं मेरे लाल, नहीं बेटा कासिम खेमे में नहीं घुसेंगे, मैं पानी पिलाने के लिए लाऊंगा बाहर, तीरे से दम लगेगा, तसल्ली हो गई कासिम, तसल्ली हो गई कि कोई खेमों में नहीं घुसेगा। हुसैन ने नहीं बताया, कासिम को नहीं बताया कि छोटा है कमसिन है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, नहीं बताया हुसैन ने कि बेटा कासिम सिर्फ खेमों में घुसेंगे नहीं, खेमों को लूट कर आग भी लगा देंगे, सिर्फ खेमों को लूट कर आग नहीं लगाएंगे, बल्कि तेरी मां बहनों फूफियों के सरों से चादर भी छीन लें, उन्हें कैदी भी बनाएंगे, उनके बाजुओं में रसन भी बांधेंगे, कुछ नहीं बताया। मां ने नसीहत कर दी, वादा ले लिया कासिम से रात को कि मेरी लाज रख लेना, मुझ बेवा की लाज रख लेना, लेकिन सुबह कासिम को इजाजत नहीं मिलती, इजाजत नहीं मिलती, रोते हुए अपनी खिदमत अपनी वालदा की खिदमत में आए हैं, जनाब में फरवा की कलेजे से लगा कि मेरे लाल रोता क्यों है, कहा मादरे गिरामी कितनी बार जा चुका हूं चाचा जान, मुझे इजाजत ही नहीं दे रहे मैदान में जाने की, नहीं मेरे लाल तुझे इजाजत जरूर मिलेगी। जिन रिवायात में मकातिल में तावीज का जिक्र है, इमाम हसन की नसीहत वसीयत का जिक्र है, वो खोली नसीहत का ले जा अपने चचा जान के पास ले जा, तुझे जरूर इजाजत मिलेगी, बस बाबा की तहरीर को देखा चूमा आंखों से लगाया सर पे रख के दौड़े पास, चचा जान ये मेरे बाबा का खत आपके नाम, हुसैन ने भाई की तहरीर को देखा, आंखों से अश्क जारी, हुसैन ने भी बोसे दिए, आंखों से लगाए। अब रो रहे हैं हुसैन कासिम को सीने से लगा के। भाई यही तो तहरीर है कि हुसैन कासिम मेरी खास कुर्बानी है, इसे रोकना मत, इसे मैदान में जाने देना, ये मेरा खास हदिया है तुम्हारे लिए। हुसैन ने अपने हाथ से कासिम को सजाया है, अब मामा भी अपने हाथ से पहनाया, अबा भी दोष पे अपने हाथ से डाली, कमर में पटका भी बांधा, तलवार को भी हमायल किया। जब लेकर बाहर निकले हैं ना हसन के महलका को, तो सख्ते में आ गया था दुश्मनों का लश्कर भी इतने हसीन और नूरानी चेहरे को देख। इतना कम सिन था कासिम के घोड़े पे सवार नहीं हो सकता था। एक तरफ से बाग थामी थी अब्बास ने, एक तरफ से अली अकबर ने, हुसैन ने कमर से पकड़ के उठाया था और कासिम को घोड़े पर बिठाया था। और घोड़े पर बैठने के बाद भी कासिम के दोनों पैर रकाब में टिकते थोड़ी थे, कभी एक तरफ झुकते थे कासिम तवाजुन बरकरार रखने के लिए, कभी दूसरी तरफ। जब सवार हो गए तो बड़ी हसरत से अब्बास ने देखा, बेटा कासिम जरा ध्यान से, मुस्कुरा के कहते, चचा जान आप ही ने तो सिखाई है तलवार चलाने, बस आप मेरे वार देखिएगा। आए मैदान में, जो नहीं जानता जान लो, मैं उस हसन का बेटा हूं जिससे जिस पर जंग से जी चुराने का इल्जाम लगाया गया। आओ मेरे मुकाबले पर आओ, मेरी तलवार की काट देखो, फिर तुम्हें मालूम हो कि मैं किस शहसवार अरब का बेटा हूं, मैं किस हसन का बेटा हूं। ऐसी रजस पड़ी थी कि पिसरे सात के फौजियों के दिल हिल गए थे। ये जो कमसिन नजर आ रहा है इसकी रजस तो सुनो, रजस कैसी पड़ता है। तो इसकी फौज में जो सबसे नामवर पहलवान था अरजक, उसको हुक्म दिया, तू जा इस बच्चे का सर कलम करके लेकर आ। उसने हकारत से देखा, माफ कर दीजिएगा मुझे, रिवायत का लफ्ज है इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। उसने हकारत से देखा, कहता बच्चे के मुकाबले में जाऊंगा। उसके चार बेटे जंग में साथ थे, एक को भेजा, जा इसका सर काट के ला। कासिम के मुकाबले पर आया, कासिम ने एक ही वार में उसके दो हिस्सों में तकसीम कर दिया कमर से। इधर वो गिरा, उधर कासिम ने पलट कर अपने चचा हुसैन को, अब्बास को, भाई अली अकबर को देख। अरे बच्चे जब कोई कारनामा करते हैं तो तारीफ चाहते हैं ना। फख्र से देखा अपने चचा हुसैन ने, मरहबा कहा, आफरीन कहा अब्बास ने, अली अकबर ने तकबीर बुलंद की, भाई कासिम बहुत अच्छा वार किया था। जब एक बेटा मरा दूसरे को हुक्म देता, जा अपने भाई का बदला लेकर आ। सर पे वार किया कासिम ने, दो बराबर के हिस्सों में तकसीम करके फेंक दिया। फिर पलट कर देखा, फिर हुसैन ने मरहबा, अब्बास ने मरहबा, अली अकबर ने मरहबा। इधर तकबीरें बुलंद हो रही हैं, हुसैन की सबसे तीसरा आया, चौथा आया। जब चार बेटों की लाशें देखी, गुस्से में पागलों की तरह दौड़ा दीवानावार हमला करने के लिए कासिम की तरफ। हुसैन भी, अब्बास भी, अली अकबर भी, अब्बास भी घबरा गए। अब्बास ने चिल्ला कर कहा, कासिम ध्यान से बेटा, बड़ा नामवर पहलवान है। कासिम ने अपने आप को तैयार किया, जंगी हरबा इस्तेमाल किया, ऐसा वार किया, उसको उस जंगी हरबे में उलझा कर सर पे के उसका दर सर बीच में से दो हिस्सों में तकसीम हो गया। बस कासिम ने ये वार किया, उधर हुसैन सजदे में, अब्बास सजदे में, अली अकबर सजदे में। हजारा ने हुसैन जो ही अर्जक कत्ल हुआ, चिल्लाया पिसरे साथ, ये हैदर का पोता है, पूरे लश्कर को काट देगा, एक साथ हमला करो। पूरे लश्कर ने हमला किया। आजादारो, जब सजदे से हुसैन ने सर उठाया, अब्बास ने सर उठाया, अली अकबर ने सर उठाया, कासिम नजर नहीं आया। कासिम नजर नहीं आया, हजारों के नरक में घिरा हुआ कासिम हर तरफ वार करता है। यकीन जाने, यही लिखा है मक्तल में कि इस बच्चे ने 40 शामियों को जहन्नम का रास्ता दिखाया। जख्मी कितने किए उनका कोई शुमार ही नहीं था, लेकिन आखिर कहां तक लड़ता, बाजों की ताकत जवाब देने लगी। जब तलवार हाथ से छूट गई, दुश्मनों का गलबा होने लगा और जब जख्मों से चूर होकर गिरने लगा कासिम, तो गिरते गिरते आवाज दी, अम्मा हद की, चचा जान मेरी मदद, चचा जान मेरी खबर लीजिए, मैंने अपनी जान आप पर कुर्बान कर दी। लिखा है कि जितनी जिस तरह से कासिम की आवाज सुनकर हुसैन दौड़े थे, किसी शहीद के लाशे पर नहीं दौड़े, पुकारते जाते थे, मेरे लाल कासिम मैं आ रहा हूं, बेटा कासिम मैं आ रहा हूं। अब्बास दौड़े, अली अकबर दौड़े, हुसैन दौड़े, रे कासिम नरगे में है। वही रिवायत पढ़ रहा हूं, दोनों रिवायतें मिलती हैं, पामाल ये लाशे कासिम की रिवायत भी मिलती है, वही पढ़ रहा हूं, वही पढ़ रहा हूं, पामाल ये लाशे कासिम की रिवायत, चारों तरफ से घिरा हुआ है, अब किसी तरह नरगे से कासिम को निकालना है। अब्बास ने हमला किया, हुसैन ने हमला किया, अली अकबर ने हमला किया, जब इन हमलों की ताब ना लाते हुए भागा है लश्कर इधर से उधर, उधर से उधर, मैदान साफ हो गया। फिज़ा ने खबर दी खेमों में, बीबियों उम्मे फरवा का लाल आ रहा है, जमा हो जाओ। उम्मे फरवा मुतमईन है, इंतजार कर रही है कि आका मेरा मौला अब मेरे बच्चे कासिम की लाश लेकर आएगा। उधर हुसैन ने चादर को बिछा दिया, अबा को मैदान में बिछाया, कुछ इधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया। मैं कहता हूं मौला कासिम की लाश उठाइए, माँ इंतजार कर रही है। कुछ देर चुनते रहे टुकड़ों को, फिर गठड़ी की सूरत दिया, उस गठड़ी को सीने से लगाया, आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ खेमा गाह की तरफ रवाना हुए। निदा दी गई, हुसैन आ गए, खेमे में इंतजाम हुआ। अब जब हुसैन एक गठड़ी को सीने से लगाए, खेमे में दाखिल हुए, माँ हैरान होकर कहती है मौला मेरे कासिम की लाश कहाँ है, मेरे लाश, मेरे कासिम की लाश कहाँ छोड़ आए। हुसैन ने कोई जवाब न दिया, गठड़ी को फर्श पे रखा। अब जो गठड़ी खोली, अरे कैसा सेहरा कैसी मेहंदी, यही खून है कासिम का खून जो उसके हाथों की मेहंदी बन गया था। बस ये मंजर देख के माँ का आलम ये था कि शाम तक फरामोश नहीं किया था, उन टुकड़ों को भी वापस लिया गया था। जब औरतों ने कहा था, शामी औरतों ने, कि इतना कमसिन बच्चा इसने क्या किया होगा, तो शिकस्ता सर को कलेजे से लगा कि उम्मे फरवा ने एक जुमला कहा था, खबरदार शामी औरतों मेरे कासिम को ऐसा ना कहना, तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे कासिम ने किस तरह मेरी लाज रखी थी। क्यों पढ़ता हूं पामालिया लाश है कासिम, एक जुमला और सुन लीजिए बस। अरे कासिम ने सुन रखा था कि असरे आशूर के बाद सब अपने अपना हक जताएंगे, लाशें उठा कर ले जाएंगे, बस मेरे चचा हुसैन का लाशा पामाली के लिए रह जाएगा। लिहाजा कासिम को गवारा ना हुआ, कहता होगा ए चचा देख तेरा ये भतीजा इस मुसीबत में तेरे साथ शरीक है।